نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير پیج نمبر بولیے سب مل کے محسن انسانیت مدنی دور اور اس میں سے ٹاپک ہے خانہ نبوت میں چنگاریاں 338 پیج ہے ہم پیچھے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قصہ اور اس کے سیکوینسز پڑھ رہے ہیں کیا اثرات ہوئے اور اس میں سے سبق کیا نکلتے ہیں آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے ستایا گیا اس میں آپ کی گھریلو زندگی کو پریشان کرنا اور اپسٹ کرنا بھی آ گیا مدینہ کے مخالفین اسلام نے شرارت کی چنگاریاں حضور کے حرم میں پھینکنے کے ناپاک جتن بھی کیے ان کی نگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے رفقائے خاص میں پھوٹ ڈلوانے کا یہ بہت ہی سادہ اور آسان راستہ تھا تحریک اسلامی کے سربراہ کو گھریلو جھگڑوں میں پھنسا دینے کی تدبیر اگر کامیاب ہو جاتی تو اس کے نتائج بڑے ہی مہلک ہوتے مدینے کی عام عورتیں حضور کے گھر آتی جاتی تو تھی ہی پھر وہ جو کچھ بھی دیکھتی ہوں گی اسے نسائی کس کو کہتے ہیں عورتوں کا جو انداز ہوتا ہے ویمن سٹائل اسے نسائی نفسیات کے مطابق بیان کرتی پھرتی ہوں گی اسی طرح اشرار و منافقین کو بخوبی علم رہتا ہوگا کہ حضور کے گھر میں کس طرح فقر و فاقہ کا سما چھایا رہتا ہے حضور کی ازواج بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین تھیں ان کے ذوق کسی سے کم اونچے نہ تھے لیکن دوسری طرف معاشی حالات جیسے تھے اور جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل سے راضی تھے وہ ان کے سابق ذہنی معیارات سے بہت ہی فروتر تھے فروتر کس کو کہتے ہیں اوپر اونچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج بھی مسلک صبر پر گامزن تھیں یعنی صبر کر رہی تھیں اور ان کو خود یہ شعور تھا کہ عالم نو کا معمار اعظم جان جوکھوں کے جس عالم سے گزر رہا ہے اس میں عیش و تنیم کی جنتیں آراستہ نہیں کی جا سکتی اتنی بات سمجھ آئی ہے میں اپنے دل میں اس درد کو محسوس کر رہی تھی اور آپ بھی تھوڑا سا امیجن تو کریں لوگ مسجد نبی میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس بیٹھے خیریت ہے سب ٹھیک ہے بس کیا کروں صبر کر رہا ہوں اچھا جی چپ ہو گئے نہیں بتائی بات تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا تو ایک دم ایسے کھوئے کھوئے ہیں خوابوں میں کہیں دور ہیں جی اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا او اچھا چلے چلے اور اگر ایک دن لوگ آئیں اور اللہ کے نبی ہیں ہی نہیں کدھر ہیں پتہ نہیں کوئی گھر میں مسئلہ تھا وہاں رہ گئے کیسا تصور آتا تھے نا انسان نو بیویاں نو طرح کے مسئلے اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ ہر بیوی بڑے گھر سے آئی تھی بڑے بڑے باپوں کی بیٹیاں تھیں مال کے اعتبار سے بھی شہرت کے اعتبار سے اور ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارا کرنا ہے کہ جس کی جیب میں آپ کہہ لیں کہ چار پیسے بھی نہ ہو یہ کہنا بڑا آسان ہے جب سر پہ پڑتی ہے پھر سمجھ آتی پھر بڑے باپ کا بڑا پن اور وہ ساری دولت کے جو لاڈ ہوتے ہیں نا وہ سامنے آتے ہیں آج تو ایسی بچیاں شاید ہی نبھا کر سکے اگر طبیعت میں صبر اور شکر ہو تب ایک منٹ میں کہیں گی ابا کے گھر میں یہ تھا اور میں تو اتنے پلی تھی اور میں تو نوکروں میں رہتی تھی اور مجھے آپ نے کہاں لا کے رکھ دیا لیکن آپ یہ سوچیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے گھریلو معاملات اور دین کے کاموں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے اور اصل یہی جہاد ہے اصل کامیابی یہی ہے یہاں پر میں سیرت کیوں پڑھتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہم میں سے 90% لوگ جگلنگ کرتے ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ جب وہ دین کی طرف آتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ حق کا راستہ صبر کا راستہ ابھی میں نے صبح ایک اسٹوڈنٹ کی پوسٹ اپنے انصار اللہ کے گروپ میں شیئر کی ہے بیسیکلی آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ سیریز ہو چکی ہے لیکن کسی اور کلاس میں ہو رہی ہے ایڈوانس کورس میں سر اٹھا کے جیو آپ نام سے آگاہ ہیں تو اس کو پڑھ کے انہوں نے اپنے پورے نوٹس شیئر کرنے ہوتے ہیں تو ہر ویک الحمدللہ ساتھی بھیجتے ہیں اسٹوڈنٹ کے سارے نوٹس میں نہیں پڑھتی آخری پیج پتہ نہیں کیوں پرومیننٹ تھا تھوڑے سے دو چار لفظ سے میں نے کہا دیکھو کیا لکھا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں یہ لکھتی ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ پورے ایک ہفتے بعد میری زندگی کا آخری دن ہے تو میں اس پورے ایک ہفتے کو کس طرح گزاروں گی फिर नीचे उन्होंने उजर लिखे, ये टॉपिक कुछ ऐसा चल रहा होगा ना कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके रास्ते को कोई रुकावट नहीं रोक सकती। तो पांचवा उजर उन्होंने लिखे, मैं तो बीमार हूं, मकसद में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हर बीमारी से बेनियाज कर दे। तो सच कहा उस्ताजा जी ने, जिनको जीतना होता है, सर उठाकर जीना होता है, वो रुकावटों का नाम नहीं लेते। ये मुझे जुमला मुझे याद था, बोला हुआ, लेकिन वो एक स्टूडेंट के हाथ से, और फिर इस कमेंट को उन्होंने जो भेजा, इसके बाद मुझे जिसकी बहुत ही खुशी हुई है उस स्टूडेंट पे, तकरीबन मैं आपको एक गलत ना बोल दूं इसलिए ढूंढ रही हूँ, मेरे गुमान के मुताबिक 9 मिनट की उन्होंने शेयरिंग भेजी, सुनाने वाली है। अपने दूसरे साथी जो उनके साथ भी ये सीरीज कर रहे हैं, उनके नाम कुछ, अपनी फीलिंग्स, 9 मिनट 14 सेकंड की शेयरिंग है उनकी, कि ये सुन सुनाकर वो क्या फील कर रही हैं। तो याद रखिएगा, मकसद में बहुत ताकत है। ये मकसद था जो नबी को घरेलू झगड़ों में उदास नहीं करता था, बीमारियों में कमजोर नहीं करता था, परेशानियों में ये नहीं होता, खैर में ये नहीं। ये जिंदगी का मकसद आपको घर में कई दफा याद आया होगा, आप कहते हैं मेरे सर में दर्द है, चाय का कप लेके लेटती हूँ, इतने में फोन आ जाता है, मेहमान आ रहे हैं, अब उनके सामने अच्छी तरह पेश होना, घर साफ रखना, कुछ दो चार चीजें खिलाना, ये हमारा मकसद होता है उस वक्त, आपको भूल जाता है, वल्लाह ही भूल जाता है। मैं तो देखती हूँ 98% पाकिस्तानी सिस्टर्स को मेहमानों की आमद के वक्त पे अपनी बीमारियां, खाना पीना सब भूल जाता है, मकसद है ना। ये मकसद जब तक अल्लाह का दीन नहीं बनेगा, हम परेशान ही रहेंगे, ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये तकलीफें ऐसी होंगी। कल मुझे ऐसे बोझ फील हो रहा था अपनी तबीयत में, तो मैंने कहा नहीं जाती, मर्जी है, मेरी छुट्टी है और मेरा क्लास तो है नहीं, मैं तो संडे को ऐसे ही आती हूँ, ना मुझे पढ़ाना होता है ना कुछ, बस देख लो, और मीटिंग्स है उसमें भी मेरी मर्जी है, बैठू ना बैठू। मैं भी इसी सोचों में थी तो एक साथी का फोन आ गया, मैं आ जाऊँ आपको लेने। बस उस वक्त पे मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि घर में रहूंगी तो आई एम श्योर, 110% श्योर कि मैं बेड पे रहूंगी, मैं नहीं उठूंगी, तबीयत बोझिल थी। तो जब उन्होंने कहा, मैंने 1-2 सेकंड सोचा, अपने हस्बैंड से मशवरा किया, कहते हैं चलो, मैंने उन्होंने कहा आप आ जाएं, हालांकि उनका जो फोन है, मैं बेड पे थी अभी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, उनके आने के दौरान सोचा मैंने जो भी करना कराना है, इस सोच से आ गई कि यहाँ आऊंगी थोड़ा बहुत देख के तो मैं अपने लेट जाऊंगी और मैं अपना पढ़ूंगी जो मैंने पढ़ना, घर बैठ के लेट के पढ़ना इधर पढ़ लूंगी। यकीन करें जब यहाँ आई तो उसके बाद, यानी संडे को एक साथी नहीं आ पाए, दूसरे नहीं आ पाए, कुछ टाइम कल चेंज था, यानी मैंने कल वो काम किया जो मैंने कभी नहीं किया, और मैंने उन सब लोगों को दुआएं दी कि जो रोज ये काम करते हैं आपके स्कूल में। जब बाकियों को पता चला आप क्यों ये कर रहे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं आ गई हूँ, वरना हो सकता है जो साथी क्लास में थे उनको ही जाके किचन को भी देखना पड़ता, उनको ही और रिसेप्शन को देखना पड़ता, उन्हीं को इधर से उधर। तो मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ भी बीमार हूँ, लेकिन मुझे किस चीज ने भुला दी बीमारी, और मैंने उस वक्त इतनी खुशी महसूस की कि ये काम भी मैं कर सकती हूँ, मुझे आता तो वैसा कोई नहीं ऐसे करना जैसे ये साथी करते, पर मैं भी करके देख लेती हूँ क्या कर सकती हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसे लग रहे थे जैसे शादी वाला घर है, 4-6 मीटिंगें थी, हर मीटिंग में चाय कट रहे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाना भेजना, ये है वो है, किया मैंने किराया खुद कुछ नहीं, लेकिन किए हुए कोई सेट कर करा के रखा या कुछ थोड़ा बहुत कर भी लिया। कहने का मकसद ये है कि बेमकसद जिंदगी बेकारियत है, बेकारियत है ये, कि एक इंसान इस मकसद में हो ना, ये घरेलू झगड़े लड़ाइयां, मियां को ये नहीं पसंद, बच्चे का नहीं मूड सही हो रहा, बेटी ये है वो है, ये सजा होती है किस बात की, बेमकसद जिंदगी की। करके देखे, एक साल करके देखे, मुझे यकीन है आप इस रास्ते से कभी नहीं पलटेंगे। शुरू में बंदा पलट जाता है जब तक यकीन नहीं आया होता। तो अल्लाह के नबी का ये मकसद था जो आपको इन सारी बातों से बेनियाज किया हुआ, फिर मैं उस दर्द को महसूस कर रही हूं। घर में मियां बीवी की बातचीत एक किस्म की बंद है, हालचाल पूछा क्या हाल है आयशा, ठीक हो? हाँ ठीक हो। बीवी परेशान है कि ये उस तरह नहीं देख रहे जैसे पहले देखते हैं, जैसे मेरे लाड करते हैं, बीमार थी कुछ नहीं, कितनी सर्द मेहरी होगी ना, और अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, मेरे लिए सबसे बड़ी मेरा अल्लाह के सजा या मौत है कि मेरा हस्बैंड मुझसे कहे मैं तुमसे बात नहीं करनी, अल्लाह का शुक्र ऐसा मौका नहीं आता, लेकिन मैं सोचूं तो मैं कांप जाऊं, ये मौत है, मैं 5-10 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए कुछ आ जाए, बच्चों की तरह हो जाती हूँ, उनको भी पता, वो मुझे छेड़ते हैं कभी, मैं कहूँ ना मैंने नहीं बोलना, कहते तुम्हें याद ही नहीं रहना, तुम भूल जाओगी देखना भी थोड़ी देर बाद, और मैं भूल जाती हूँ, यानी मेरे लिए ये मौत है, अल्लाह ना करे ऐसा कभी वक्त है। लेकिन नबी के दिल में कितना हसास दिल था, और आयशा जैसी बीवी के जो दिल में रहती थी, तो आप देखिए जाती जिंदगी से ऊपर उठे, ये है मकसद आपके मेरे इस वक्त ये पढ़ने का, फिर खुश रहेंगे। और एक दिन अल्लाह के नबी ने मसूद नबी से छुट्टी नहीं की, परेशान हूँ क्या बताऊँ, मेरा मूड नहीं ठीक, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं। और याद रखिए हर बीमारी पीछे किसी न किसी ऐसे नेगेटिव जज्बे का रिएक्शन होती है, सर में भी दर्द को ऐसे नहीं होती, और कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर होती है। और फिर अच्छे बड़े घरों की बीवियाँ ऐसी, और वो भी तो कर रही थी ना, ये भी बहुत प्यारी बात है, ये आखिरी जुमला जो हमने पढ़ा है कि इस मैशो तनीम की जन्नतें आरास्ता नहीं की जा सकती। एक नबी के घर में आप बैठे हैं और ऐश और नेमतों में पल्ला हुआ अंदाजो आपका जीने का नहीं हो सकता, मगर इंसान फिर इंसान है, और इंसान हमेशा इन ख्वाहिशात और जज्बात के दरमियान घिरा रहता है जिन्हें इसकी फितरत में गूंद दिया गया है। दूसरी तरफ अजवाज मुतहरात ईमान अखलाक के लिहाज से आली मर्तबत होने के बावजूद और इत्तेहाद और यकजहती और मस्कीनी और हलीमी का एक शानदार मेयार दुनिया के सामने पेश करने के बावजूद कभी ना कभी बाहमी रश के जज्बात से हल्का सा असर ले सकती थी, जो एक घर की रौनक बनने वाली खवातीन के दरमियान होता है। इसके अलावा कुरैश की औरतों में शोहरों की वफादारी और अतात की जो कड़ी रिवायात चली आ रही थी, इनके खिलाफ मदीना की औरतें मर्दों के मुकाबले में खासा जोर रखती थी। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे रोब तमकनत वाले मर्द अजीम ने मदीना के दौर में एक बार अपनी ज़ौजा मुख्तरमा को डांटा तो उन्होंने आगे से जवाब दिया। इस पर हैरत से हजरत उमर ने कहा, तुम मुझे जवाब देती हो, जरा देखें जुमले को, तुम मुझे जवाब देती हो। इसी मौके पर इनको अंदाजा हुआ कि माशरे की इस दवाजी जिंदगी में मक्का की रिवायात पर मदीना की फिजा का असर खासा पड़ चुका है। ये नक्शे अहवाल अशरारो मुनाफिकीन के सामने था, और इसके अंदर से उन्होंने शरारत की राह निकाली। उन्होंने बाज औरतों को इस गरज के लिए आलायकार बनाकर इस्तेमाल किया कि हजूर के घर में फितने की चिंगारी फेंक कर आग भड़काएं। एक ऐसी औरत उम्मे जल्दाह का नाम हमारे सामने आता है जिसका पार्ट ये था, कानत तो हर रिशु बैन अजवाज नबी, यानी वह नबी सल्लम की बीवियों को भड़काया करती थी। इस तरह की औरतों की मदद से इफ्क की चिंगारी के शोले उठाए गए थे। इफ्क क्या था? हजरत आयशा पे जो इल्जाम उठा था। अशरार की इन इस दरअंदाजियों की वजह से पै दर पे चंद वाकयात ऐसे हुए कि जो खासे तशवीशनाक हो सकते थे, लेकिन खुदा की मदद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, सहाबे खास के तआवुन और अजवाज की शराफत के असर से बर वक्त इस्लाह हो गई। असल किरदार है और वो वहां में नजर आता था। इनमें से सबसे बड़ा वाकया अजवाज का वो मुत्तहिदा मुजाहरा था जिसका मुदा तौसीए नफका था। तौसी किसको कहते हैं? बढ़ाना, और नफका खर्चा, हमारा खर्चा बढ़ाएं। यही ईला का मुहर्रिक हुआ। खुदा का फजल खास था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने पूरे इखलास के साथ हजूर का पहलू मजबूत किया और अपनी साहबजादियों की हिम्मत अफजाई करने की बजाय इनको सख्ती से डांटा। इधर अल्लाह ताला की तरफ से चैलेंज आ गया, ऐ पैगंबर अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुमको दुनियावी जिंदगी और इसकी जीनत और आयश मतलूब हो तो इस घर में नहीं मिलेगी। सोचे इस जुमले को, इधर नहीं मिलनी ये चीज। आओ मैं तुमको रुखसती के जोड़े देखकर बतरी के अहसन रुखसत कर दूं, और अगर तुमको खुदा, खुदा का रसूल और आखरत का ठिकाना मतलूब है तो खुदा ने नेकुकार खवातीन के लिए बड़ा सवाब मुहैया कर रखा है। कितना मुश्किल वक्त था आपकी बीवियों पे। मैं जब भी आयत पढ़ाती हूँ, सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 28 और 29 है ये 28-29, तो मैं सोचती हूँ आप अपने ऊपर तो लें, हस्बैंड ये कह दें जो मांगती हो मांगो, जो लेना है लो, लेकिन छुट्टी करो। क्या कोई औरत है जो लेगी? वही लेगी जो तंग आई होगी, आम हालात में मिजाज के बिगाड़ के साथ तो नहीं लेगी। तो ये सारे मरहले आपकी जिंदगियों में भी आए। दो रास्ते अजवाज के सामने रख दिए गए कि जिसे चाहे इख्तियार करें, अब ये स्वाद की शराफत थी कि इनको फौरन तुनब्बे हो गया, यानी वॉन्ड हो गई, आगाह हो गई। हजरत आयशा जो अपने असर रसूख और अपनी गैर मामूली जहानतों मतानत की वजह से इस मुजाहरे की लीडर बनी हुई थी, इन्हीं को सबसे पहले बाला खाने से उतर कर हजूर ने इस खुदाई फैसले से आगाह किया और इन्हीं ने सबसे पहले ऐलान किया कि मैं सब कुछ छोड़कर खुदा और रसूल को लेती हूँ। इसके बाद तमाम अजवाज ने अपने मुतालबे से शरह सदर के साथ दस्तबरदारी कर ली। दुश्मनों के दरमियान घिरे हुए एक बड़े घराने में अगर अशरार की मुसलसल रखना अंदाजियों और खटिया औरतों की लगाई बुझाई के नतीजे में किसी एक मौके पर खिंचाव पैदा हो गया हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि इतनी शरारतों के बावजूद इस घर के सफीने का बखैर खूबी बच के निकल जाना इस कहल की मजबूती, शराफत और यकजहती का सबूत है। अब अंदाज़ा कर लीजिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चार तरफ किसको कहते हैं, चारों साइड से, किस तरह हजूर के चारों तरफ किस तरह रंगारंग शरारतों के डायनामाइट बिछाए जा रहे थे, कहाँ कहाँ फतीले रखे जा रहे थे। ये फतीले क्या होते हैं? वो धागे जिसको आग लगाकर धमाके किए जाते हैं, धागे को कहते हैं। आग लगाने के लिए जो एक डोरी सी बटते हैं ना, उसको फतील कहते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इमोशनल कर देने वाला था, जिससे हमें पता चला कि अल्लाह के नबी को मकसद की धुन थी जिसकी वजह से वो हर किस्म के घरेलू हालात के अप्स एंड डाउन्स के साथ भी इस रास्ते पे चलते ही गए और अल्लाह के रास्ते में खड़े ही रहे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी ऐसा कर दे। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।